एहेस्केल अध्याय 18। एहेस्केल बाबुल लाए गए बंधुओं को परमेश्वर का निर्देश देता है। एहेस्केल अध्याय 18 पद 1 और 2। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इसराइल के देश के विषय में ये कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते परंतु दांत खट्टे होते हैं बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? एहेस्केल बाबुल में था और ये कहावत बाबुल में प्रचलित थी, जिसका अर्थ था कि हम अपने बाप दादों की करनी का फल भुगत रहे हैं। रोचक बात यहां ये है कि यिर्मयाह ने कहा कि यरूशलेम में भी यही कहावत चल रही थी। हमारा कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि हम दोष अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, हम सदैव दूसरों पर दोष लगाना चाहते हैं। यदि किसी के साथ कोई संगीन समस्या है और वो मनोवैज्ञानिक के पास जाता है तो मनोवैज्ञानिक उससे कहेगा कि उसकी समस्या का कारण उसका पिता है। ध्यान रखो कि आप जो भी है आप अपनी वजह से है, इसलिए अपनी बुराइयों और समस्याओं का दोष अपने ऊपर लेना चाहिए। इस स्वभाव का मूल आदि से है। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि उसने ये क्या किया, तब उसने दोष लगाते हुए कहा, स्त्री ने जो तूने मुझे पत्नी होने के लिए दी, इसने मुझे ये फल खिलाया। हम अपना दोष स्वीकार करने की अपेक्षा किसी और को दोषी बना देते हैं। इस विषय में हम बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम लोग जो इसराइल के देश के विषय में ये कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते परंतु दांत खट्टे होते हैं बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? एहेस्केल अध्याय 18 पद 3। प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ। परमेश्वर अब इस कहावत का खुलासा करने वाला है। एहेस्केल अध्याय 18 पद 3 और 4। तुमको इसराइल में फिर ये कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। देखो, सभों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। हर एक मनुष्य अपना स्वयं का लेखा देगा। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं केवल एक ही व्यक्ति का उत्तरदायी होऊंगा, स्वयं का। मैं अपने बच्चों का या अपनी पत्नी का उत्तरदायी नहीं रहूंगा। परमेश्वर मुझसे केवल मेरा ही लेखा लेगा। वहां आप नहीं कह सकते मेरे पिता ने या मेरी माता ने। आप वहां टालने वाली बात नहीं कर सकते। जो पाप करता है वो मर जाता है। वो आपका दंड आपके माता पिता को और उनका दंड आपको नहीं देगा, और ना ही वो आपके कर्मों का प्रतिफल आपके माता पिता को या उनके कर्मों का फल आपको देगा। प्रत्येक व्यक्ति अकेला ही परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और अपने कर्मों का लेखा देगा। समय आ गया है कि आप इस सत्य का सामना करें और परमेश्वर के सामने अपने उत्तरदायित्व को समझें। ये जान ले कि हम सबको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है और अपने इस सांसारिक जीवन का लेखा देना है, भले कामों का या बुरे कामों का। अतः समय है कि हम तैयार हो जाएं। एहेस्केल अध्याय 18 पद 5 से लेकर 7 तक। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, ना इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और ना ऋतुमती के पास गया हो और ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक फेर दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो। जब कोई आपसे वादा करके उधार लेता है तो वो इस वादे को निभाता भी है। एहेस्केल अध्याय 18 पद 8 और 9, ना ब्याज पर रुपया दिया हो, ना रुपये की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो निश्चय जीवित रहेगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आपको व्यवस्था के अनुसार जीना है तो उसे पूरा करना अनिवार्य है। परमेश्वर की व्यवस्था में एक और उत्तम प्रावधान है, मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा धार्मिकता प्राप्त करना। एहेस्केल अध्याय 18 पद 10 से लेकर 17 तक। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा या ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला ना हो और पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो, औरों को लूटा हो, बंधक ना फेर दी हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वो जीवित रहेगा? वो जीवित ना रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं, वो निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो और वो अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान ना करता हो, अर्थात ना तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, ना इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, ना कुछ बंधक लिया हो, ना किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दीन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती ना ली हो, मेरे नियमों को माना हो और मेरी विधियों पर चला हो, तो वो अपने पिता के अधर्म के कारण ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। हर एक मनुष्य अपना उत्तर देगा। एहेस्केल अध्याय 18 पद 18 से लेकर 21 तक। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया, वो अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किए हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वो जीवित ही रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, यदि दुष्ट मन परिवर्तन करे, तो परमेश्वर के अनुग्रह और दया का पात्र होगा। एहेस्केल अध्याय 18 पद 12 से 23। और न्याय और धर्म के काम करे तो वो ना मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वो जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर की छवि लोगों के मन में इतनी बिगाड़ दी गई है कि वे उसे बदला लेने वाला परमेश्वर मानते हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर उन्हें नरक में डालने के इंतजार में रहता है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर सहनशील और धीरजवंत है। वो तो भरसक प्रयास करता रहा है कि मनुष्य को नरक से बचाए। उसने तो अपना इकलौता बेटा दे दिया कि वो हमारे पापों को उठा ले, जिससे कि हम स्वर्ग जाएं। नरक में जाने का अर्थ है परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के वंचित होना। आपको उसके पुत्र से घृणा करना होगी। आपको परमेश्वर के प्रावधानों से मुंह मोड़ना होगा। और सत्य तो यह है कि आपको मसीह यीशु की देह पर से चलकर नरक जाना होगा, क्योंकि आपके और नरक के बीच में वो खड़ा रहता है। नरक जाना आसान नहीं है। आपको एक एक कदम पर परमेश्वर का विरोध करना होगा, उसके आत्मा के अंगीकार से लड़ना होगा। यदि आप अड़ जाएं और लगे रहें, तो आप निश्चय ही नरक जाएंगे। एहेस्केल अध्याय 18 पद 24 से लेकर 32 तक। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वो मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इसराइल के घराने, देख, क्या मेरी व्यवहार एक सा नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वो उनके कारण मरेगा, अर्थात वो अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वो अपना प्राण बचाएगा। वो तो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इसराइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इसराइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की वाणी है। हे इसराइल के घराने, मैं तुम में से हरेक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इसराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर इसराइल को पुकारता है, अपने पापों से मन फिराओ और मेरी ओर मुड़ो तथा जीवन पाओ। मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती है। मन फिराओ और जीवित रहो। परमेश्वर उनसे याचना कर रहा है। आप कहेंगे कि यदि धर्मी जन अधर्म में पड़ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तो क्या उसकी धार्मिकता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा? ये आपकी अपनी समझ है। मेरे विचार में जो लिखा है वो अर्थपूर्ण है।